وَقَدَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے لوط کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا، کیا اَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ صبح ہوتے ہی ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ یعنی نبی کو پہلے سے پتا تھا کہ آج کی رات میرے خاندان رشتہ داروں کی زندگی کی آخری رات ہے۔ دیکھیں نبی کو غیروں میں تھوڑی ہوتے تھے، چلو تعلقات والے تو بن ہی چکے تھے نا، لوگ غیر اپنے نام بھی تھے خون کے رشتے کے، پہلے سے پتا تھا کہ ان کی جڑ کٹنے والی ہے۔ مقتو، وہ چیز جو کاٹ کے پھینک دی گئی ہو، مفعول کا وزن، اور مصبحین صبح سے، صبح جو ہوتی ہے نا یہ زندگی کی علامت ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے صبح زندگی کی شام ثابت ہوئی، بتا دیا گیا کہ یہ قوم ختم ہو جائے گی۔ اور یہ جو لفظ ہے نا دابر، آخری شخص کو کہتے ہیں، دبر کہتے ہیں نا پشت کو، بیک کو، تو دابر ہوتا ہے کسی قوم پر جب عذاب آئے تو اس میں سے آخری شخص مرنے والا۔ ایک قوم پر عذاب آیا تھا، پوری قوم ہلاک کر دی گئی، لیکن ان میں سے اس قوم کا ایک شخص جو تھا وہ مکہ کی حد میں تھا اس وقت، اور مکہ میں عذاب نہیں آنا تھا، جو ہی مکہ کی حد سے نکلا اس پہ عذاب آ گیا، تو اس کو دابر کہا گیا۔ ٹھیک ہے، تو دابر سے مراد آخری شخص، اور یہاں عذاب استحصال مراد ہے، یعنی جڑیں کٹ گئیں۔ آپ سوچیں کیا خبریں چھپی ہوں گی، کیا اس وقت بریکنگ نیوز ہوں گی۔ اب یہاں قوم کا انجام پہلے بتایا ہے، اب آگے کہانی پھر چل رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ ختم ہو گئی بات، لیکن حضرت لوط کو فرشتوں نے آتے ہی سارا پلان دے دیا، ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کی قوم تہس نہس ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائیں گے اور ختم ہو گئے۔ کیا نبی کو خوشی ہوئی ہوگی؟ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ ہمارے کسی پیارے کی موت کا وقت قریب ہے، اور جن پیاروں کو ہم برائی سے نہیں روکتے، اگر ایسی اللہ نہ کرے کسی کی موت لکھی ہو جو عذاب کی ہو، تو کیا ہمارا حال خراب نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اتنا آزماتا تھا نبیوں کو، حضرت لوط کہہ سکتے ہیں نا، دیکھو میں نے اتنی محنت کی ہے، میں نبی ہوں، کچھ میرے واسطے سے، میرے وسیلے سے ان کو بچا لو۔ آپ کو نبی اللہ کے حکم کے مقابلے میں بولتے ہوئے نہیں دکھیں گے، یہی ایمان والے کا دل ہونا چاہیے، اٹموسٹ کوشش کریں لوگوں کو اللہ کی بات بتانے کی، کوئی فتویٰ نہ دیں ان کے خلاف، لیکن اس ساری باتوں کے بعد اگر وہ نہیں مانتے تو پھر ان سے بے نیاز ہو جائیں۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، لوط کے ساتھ فرشتوں کی یہ ساری بات چیت ہو رہی تھی، ان کی بیوی نے اپنے لوگوں کو خبر دے دی کہ گھر میں بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہوئے، اور اس خبر کو سنتے ہی آیت 67 وَجَاهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور آئے اہل شہر خوشیاں مناتے ہوئے، خوشی کس بات کی تھی کہ چلو نئے شکار مل گئے۔ قالا ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، لوط علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، تم مجھے ان کے معاملے میں رسوا نہ کرو، یعنی میرے مہمانوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرو، کیونکہ مہمان کی عزت کرنا، خاطر کرنا یہ انسان کے اوپر لازم ہوتا ہے، تو دیکھو تم میرے مہمانوں کو ایسا نہ کرو، رسوا نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَلَا تُخْزُونِي، اور مجھے بے آبرو نہ کرو۔ کتنی بے بسی دکھ رہی ہے حضرت لوط کی، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہاں انہوں نے اللہ کی پناہ لے لی تھی۔ قوم کا بھونڈا جواب سنیے، قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ، انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو سب دنیا والوں کی حمایت میں کھڑا ہونے سے منع نہیں کیا۔ اردو میں پتہ اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ، تم سب کے ٹھیکے دار نہیں ہو، تم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا لوگوں کی ہدایت کا، پیچھے ہو جاؤ، سارے جہاں کا درد تمہارے جگر میں، یہ کہہ لیجئے۔ اور یہ جو لفظ ہے نا تفدہون، فا دوار ہا، اس کا روٹ ہے کسی کے عیب بیان کرنا، دوسروں کے سامنے ذلیل کرنا، اور نن ہا کا لفظ نہیں سے ہے، نون ہا یا روکنے کے معنوں میں۔ آپ دیکھیے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو یہ ساری باتیں قوم کس مان میں کہہ رہی ہے، اس کو ذرا آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں۔ کہنے لگے کہ جب ہم نے کہا ہم اپنی مرضی کا کام کریں گے تو تم ہمیں روکنے والے کیا آتے ہو۔ یہاں آپ کو قوم لوط کا ایک خود ساختہ فعل دکھے گا، اور وہ کیا، ہم جو چاہیں کریں، تم روک نہیں سکتے۔ آج بھی لوگ کیا کہتے ہیں، اٹس مائی لائف اسٹائل، جیسا چاہو جیو، بالکل وہی سلوگن ہمیں آج بھی ایسی قوموں کا دکھتا ہے جنہوں نے ہومو سیکشوالیٹی کو عام کیا۔ और आपको पता, पीछे वाले किस्से में जो हमने आदम और इब्लीस का किस्सा पढ़ा और मैंने थोड़ा स्किप कर दिया, लेकिन इन आयात पे बहुत ज़्यादा डार्विनिज्म पे बात हो सकती थी कि कैसे लोगों ने डार्विन का नाम लेकर इंसान को बंदरों की औलाद, फिर बंदरों से जानवरों की औलाद चुके हुए तो कपड़ों से पाक, और वहाँ से होमोसेक्सुअलिटी को आज के दौर में जायज़ करार दिया कि जानवर भी कपड़े नहीं पहनते, तुम भी ना पहनो, जानवरों में भी फ्री सेक्स है, तो तुमने क्या ये शादी का तकल्लुफ रखा हुआ है। और कहते हैं कि बंदरों में से भी कोई एक ख़ास किस्म का बंदर है जिसकी मिसालें आज लोगों को दे दे के ये पेश किया जा रहा है कि ये इंसान के जीन्स में है कि बी होमोसेक्सुअल, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। बिलीव मी, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी, मुझे किसी ने एक मौके पे ये सवाल किया, मुसलमानों में से किया, बच्चियों में से किसी ने किया कि बताइए कि इसमें हर्ज क्या है। और वो कहते हैं ये बीमारी ये अपने बस में ही नहीं है, ये बीमारी पहले लोगों को क्यों नहीं होती थी। वो सारे जरासीम आज की सदी में उभर गए जो तब से चल रहे थे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर। यानी एक नज़रिया है सिर्फ डार्विनिज्म का, एवोल्यूशन ओनली इज़ अ थेरी, ये प्रूवन हक बात नहीं है। पीछे आपको सुनाया था सूरत अल अराफ में 8वें पारे के पहले सबक में ये बात सुनाई थी कि ये खुद वो कह चुके हैं ये फौजरी थी, सिर्फ एक थेरी है, जैसे बहुत सारी थेरीज आए दिन आती हैं। लेकिन लोगों ने इसको आम क्यों किया? क्योंकि इससे नफ्स को बहुत फ़ायदा हो रहा था। तो आज उसी बात को लेकर कहते हैं कि इसको कभी बुरा ना कहो, क्योंकि जैसे किसी को बुखार हो जाता है ना तो वो मजबूर है, इस तरह किसी के जीन्स में है कि वो होमोसेक्सुअल हो, लिहाजा उसको मजबूर समझो। यही बात जहाँ लग रही है, अवलम ननहक अनिल आलमीन, अल्लाह ताला कहते हैं अच्छा ऐसे लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गए तो इनको इनका फैसला सुना दो। हजरत लूत की ज़रा पोजीशन देखिए, कौम के लोग इतने सरकश हो चुके हैं कि आखिर फिर ये कहते हैं कि अकल करो, होश करो। आयत 71, काला हाउलाई बनातीन कुंतुम फाइलिन, आपने कहा ये मेरी बेटियां घर में मौजूद हैं, तुम इनकी तरफ रुजू करो। मतलब क्या है बनाती से? बस कहते हैं कि यह बनाती कह कर के अपनी बेटियों की बात की है, तो इसकी दो तीन मुख्तलिफ बातें हैं। कौम की बेटियां नबी की रूहानी बेटियां होती हैं, और दूसरी बात कहते हैं कि इनकी बेबसी इतनी कि उनकी गुंडागर्दी को रोकने के लिए कहा कि तुम मेरी बेटियों से निकाह कर लो और फितरत के रास्ते पे चलो, ऐसा ना करो वो ना करो। मुराद ये है कि जो अल्लाह ने फितरत का रास्ता रखा है उसी को तुम लेकर चलो। हजरत लूत का कोई बेटा नहीं था, कोई ईमान नहीं लाया, माँ बाप नहीं थे इनके, इब्राहिम के बाप के घर में पले बड़े थे ये। नबी सल्लम को असल में तसल्लियाँ दी जा रही हैं, ये सारी नस्बतें नबी सल्लम को भी थी, आपका भी कोई बेटा नहीं था, आप भी अपने चचा के घर पले थे, आपके बाप का भी इंतकाल हो चुका था। अल्लाह ताला कहते हैं फिक्र ना करो, आपकी तो बीवी इतनी प्यारी है, लूत के साथ तो उनकी बीवी भी नहीं थी। किस तरह अल्लाह ताला ने यहाँ से लूत को निकाला था, पहले सदोम की तरफ भेजा, बाद में दूसरी तरफ भेजा, कितना कीमती था लूत, लेकिन कौम ने उनकी कदर नहीं की। किस तरह लग रहा है कि उनके आगे बेचारे मस्कीनी की तस्वीर बने हुए हैं कि मेरी बेटियों से निकाह कर लो। लेकिन अब यहाँ आयत 72 में लिख लीजिए कि यहाँ बल्ला नबी सल्लम को कह रहे हैं, वरना आप गलती खाएंगे तर्जमे में। ला आमरू का कसम है आपकी जान की, किसकी जान की? नबी सल्लम की। जैसे किसी को कहानी सुनाते हुए आपके मेरा प्यारा बच्चा, बेटा मुझे तुमसे बहुत प्यार है, कहानी चल रही है अभी भी, लेकिन अल्लाह ने नबी की कसम खाई, और अल्लाह जिसकी चाहे कसम खा सकता। अबू दाऊद की रिवायत में आता है कि अपनी माओं अपने बापों और बेटों की बुतों की कसम ना खाओ, और अल्लाह की भी तब खाओ जब सच्चे हो, इसके अलावा नहीं खाओ। सही बुखारी और मुस्लिम में आता है कि हज़रत उमर को बाप की कसम खाता देखा तो पुकारा, आपने फरमाया कि खबरदार बापों की कसम ना खाओ, और अगर खल्फ लेना हो यानी बात सच्ची हो तो सिर्फ अल्लाह की कसम खा सकते हो। तो अल्लाह अपने नबी की, बड़ी यूनिक बात है कि आपकी जान की कसम। वो लोग उस वक्त अपनी मस्ती में बिल्कुल अंधे हो चुके थे। ये जो लफ्ज़ है ना या महून, अमहुन से है, दो लफ्ज़ हैं, एक है ओम युन या से, वो होते हैं आँखों का अंधा ब्लाइंड, और ये है ओम हुन दिल का अंधा बसीरत से दूर। ऐसे लोग जिनके दिलों में भलाई बुराई का बिल्कुल कुछ फ़र्क ही ना रहे, का वो तो अंधे हो चुके थे, उनको पता ही नहीं था कि हम हैं क्या, और हमारे पास क्या है, लिहाजा फ़ज़त हम सैहत मुशरिकीन, तो इनको आप पकड़ा एक चिंघाड़ने वाले उजाला होने के वक्त ने। सैहा सख्त पुकार, चीख शोर। आपको पता है कि आज साइंस ने बता दिया 105 डेसिमल से ऊपर की आवाज़ अगर किसी इंसान को आए तो उसके कानों के पर्दे फट सकते हैं, और इस कौम पर इसी तरह हुआ। कान फोड़ने वाली आवाज़ आई और मुशरिकीन यानी सूरज के निकलते ही इनकी ज़िंदगी के चराग ख़त्म हो गए। आप देखिए कि अक्सर सूरज सुबह, अक्सर अजाब जो होते हैं ना वो सुबह के वक्त आते हैं, जलजले भी अक्सर इसी वक्त पे आते हैं। सूरज निकलता है तो काम करने को दिल जाता है, लेकिन वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी को ज़ाया किया था उनको उसी वक्त सुला दिया जाता है। मुशरिक कहते हैं वो लोग जिन पर सूरज निकल रहा हो, मुराद है कि उन लोगों के सामने सूरज निकल रहा था। किया क्या, फजाल नाल यहा साफ इलाहा, तो फिर हमने इनके ऊपर वाले हिस्से को बना दिया इनका नीचे वाला हिस्सा। क्या मतलब, छतें ज़मीन पे आ गई, ज़मीन ऊपर आ गई। रिवायत में आता है कि जिब्राइल ने अपना पर इनकी बस्तियों के नीचे यूं डाला और इनको ऊपर ले गए, जब ऊपर चले गए तो वहाँ से जाके यूं पलट दिया, जैसे रोटी को आप डाल के तो फिर पलट देते हैं कि नीचे के ऊपर और ऊपर के नीचे आ गए। इतनी ऊपर गया आसमानों पर कि मुर्गों की आवाज़ें आसमानों में सुनी गई, और जब ऊपर से जाके नीचे डाला तो साथ ही वमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील, फिर हमने बरसा दी इनके ऊपर पकी हुई मिट्टी के कंकर। पहले तो आप देखिए कि किसी कौम पर अजाब आए इस तरह का, ऊपर से नीचे और जलजला, और जलजले के बाद साथ ही आसमानों से पत्थर बरसने लगे, तो वो जो तिलछट चीज़ें ख़राब हुई थी वो सब के ऊपर पत्थरों की कब्रें बन जाए और लोग अंदर दब जाए। अल्लाह अकबर। जो सिज्जील है ना, ये असल में संग और गिल था, ये फारसी के लफ्ज़ हैं, संग गिल, संग पत्थर को, गिल मिट्टी को, तो संग गिल मिट्टी के पत्थर। अरबी में जब आया तो अरबी में चूँकि गाफ नहीं होता तो जीम में ढल गई तो सिज्जील हो गया। मुराद है पकी हुई मिट्टी के वो पत्थर जो उन पर बरसाए गए, बुलेट की तरह उन पर आए और उनको गिरा के चले गए। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि ऊपर से जब कोई चीज़ गिराई जाती है ना तो उसका इतना प्रेशर होता है, नीचे से ग्रेविटी इसको खींचती है, छोटी सी चीज़ भी बहुत ज़्यादा लगती है। कहते हैं कि एनसी टावर से अगर एक पैनी के ऊपर से गिराए, सिर्फ एक पैनी कितना को वजन होगा, तो अगर नीचे खड़े शख्स के ऊपर वो गिरे तो उसके प्रेशर की वजह से वो शख्स मर सकता है। बल्कि ये जो कल का टॉपिक था उसमें जो इक्विलिब्रियम था, कायनात तो खड़ी है, तो मैं उसमें एक चीज़ सुन रही थी कि ये जो ग्रेविटी है ना, ये 9.8 है, कहते हैं कि अगर ये कम कर दी जाए तो सारा दिन रेत के ज़रे ऊपर उठते रहे, ये मिट्टी इस तरह उड़ती फिरे, ये ग्रेविटी है जो इसको ज़मीन पे बिठाती है। हमें तो पता ही नहीं, हम तो फारिग बैठे हैं, अल्लाह कितने काम इस वक्त भी इस कायनात के हमारे लिए करा रहा है। तो आसमानों से इन पर पत्थर बरसे और अल्लाह ताला ने इनको मिट्टी में डाल दिया। इन नफी ज़ालिकल आयात लिल्मुतवस्सिमीन, यकीनन इसमें निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो हक के मुतलाशी होते हैं। ये बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है, मुतवस्सिम, वसम से, वाव सीन मीम, अहले फरासत मुराद है। सीमा का लफ्ज़ सुना होगा आपने, सूरह फतह में आता है, सीमा अलामत को कहते हैं, निशानी, पहचान। मुराद क्या है कि वो लोग जो दूसरों के हालात को देखकर इबरत ले। देखिए किसी को देखे ना, किसी ने काम किया तो उसको डांट पड़ी तो आप कभी नहीं करेंगे, और अगर बेवकूफ़ है ना तो फिर वही काम करेंगे। आप गए कोई वहाँ से गिरा तो आप उधर से नहीं गुजरेंगे, लेकिन बेवकूफ़ है तो फिर वहीं से गुजरे। मुतबस्सिम कौन होते हैं, जो दूसरों के हालात से सबक लेते हैं, जो कायनात में फैली हुई निशानियों, तारीख़ के वाक़यात, नफ्स के अंदर अल्लाह की जो छुपी हुई निशानियाँ इंसान के, और क़ुरान की निशानियों से हकीकत को पहुंच जाते हैं। फिर बोल देती हूँ, मुतबस्सिम कौन है, जो यूनिवर्सल फैक्ट्स पे गौर करते हैं, हिस्ट्री पे गौर करते हैं, इंसान के जिस्म के अंदर जो अल्लाह ताला ने मशीनें लगाई हुई हैं उस पे गौर करते हैं, और क़ुरान की आयतों की हकीकत को जान के पहचान के उस पे गौर करते हैं। ठीक है, तो लिहाजा मुतबस्सिमीन। बस कहते हैं कि ये सीन मीम वाव से भी है, ये लफ्ज़ लफ्ज़ इस निकलता है। अल्लाह अकबर। व इन्नहा लबी सबीलिम मुकीम, और ये बस्तियाँ एक सीधी राह पर वाक़े थी। किससे मुराद है? कौम लूत की ये बस्तियाँ सीधी राह कौन सी थी? जो यमन और शाम के साहिलों को आपस में मिलाती थी। देखिए यमन जो है ना, ये बहीरा अरब और शाम की तरह बहीरा रूम है। दो दरियाओं के बीच में जो सड़क आती है ना, ये कौम लूत की बस्ती बिल्कुल उनके ऊपर थी। इसी तरह अगर आप देखें ना, मशरक़ की ममालिक हैं जैसे हिंदुस्तान, चीन, जावा, मलाया, इधर से यूरोप जाने के लिए जो सामान आता था ना, वो यमन के रास्ते से उतारा जाता था, और इसी रास्ते से फिर तिजारती काफ़िले शाम और फलस्तीन के साहिल पे पहुंचाए जाते थे। तो ये बस्ती बिल्कुल उधर थी। उस वक्त कहते हैं कि नहर स्वीज़ नहीं बनी थी। और अगर आपने रास उमीद वाला रास्ता कभी सुना हो, कि जहाँ से आज भी होता है, ये नहीं हुए थे। ये जो अमेरिका बना था, वास्को डे गामा ने जो डिस्कवर किया था, ये बिल्कुल मशरक़ को मगरिब से मिलाने वाले रास्ते पे कौमें लूट थी। और आप फिर नोट करें कि ये बिल्कुल वही जगह बनती है जहाँ आज हम लोग बैठे हुए हैं, यानी ईस्ट और अमेरिका के बीच की कोई जगह थी। अल्लाह कहते हैं ये बिल्कुल ऑन दी राइट वे थी। आप कभी अल्लामा इकबाल की पोइट्री पढ़ें, और फिर यूरोप से जो फितने और जो चीज़ें उठी उसको पढ़ें, और आज भी आप देखेंगे कि फैलते तो फितने पूरी दुनिया में, उभरते ज़्यादा इसी सरजमीन से। इन नफ़ी ज़ालिक लआयातिल लिलमोमिनीन, यकीनन इसमें निशानी है अहले ईमान के लिए। ईमान होगा तो बात समझ आएगी। आपको क्या समझ आई सारी बात से? क्या आपने एक स्ट्रेच में इस कौम की बात को पढ़ा और सुना? कौम तो ख़त्म हो गई, जलजले आए, आतशीशां फटे, लावे निकले, नुकीले पत्थर उन पर गए। आज भी कहते हैं कि वो इलाका ऐसा ही है, बहरे मर्दा, डेड ओशन, यही है, बदबू है। कहते हैं आज तक वहाँ मुर्गी ने अंडा भी नहीं दिया। उस जगह की ज़मीन से आज तक कोई सब्ज़ा नहीं उगा, नुकीले पत्थर है, लावे की तरह की वहाँ से चीज़ें निकली। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहते हैं हमने ऐसी चीज़ों को लोगों के लिए एक निशानी बना दिया। आज हम जाते हैं रोइंस में, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, और ऐसी चीज़ों को हम लेकर क्या सोचते हैं कि ये सारे जो हैं बहुत अच्छे होंगे। आज भी आप देखिए कि बहुत कम लोग हैं कि जो आसारे कदीमा को तबाहशुदा बस्तियों के नाम से जाने। हमने उसको भी कल्चर के नाम पे प्रिजर्व किया, और डांसिंग डॉल और बुल और फलां करके और ज़्यादा बुत परस्ती की। आप देखिए जो भी बस्तियां जहाँ से ऐसे कोई चीज़ें निकलती हैं, आप देखेंगे जब भी खुदाई होती है ना, उसमें बुत निकलते हैं। बल्कि एक ऐसी जगह, मुझे अब याद नहीं कि किस जगह की बात सुनी थी, कि जहाँ से ये चीज़ें निकली, कि मेरा ख्याल इटली की कोई बात थी, कि जब खुदाई की है तो उसमें से लोगों की लाशें इस हालत में निकली हैं कि वो जिना के फेल में थे, और उनके ऊपर लावा आया, और लावे ने उनको यूं प्रिजर्व कर दिया कि जैसे जस्ट लाइक वो समझें कि जैसे स्टैचूज होते हैं आज के दौर में लोहे के, कुछ पोम्पाई शहर है या कोई है, कहाँ पे ये आया था कि बिल्कुल वहाँ लोग अपने गलत कामों में प्रिजर्व कर दिए गए। तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हम सबको भी अल्लाह ताला इस बुरे अंजाम से बचाए।
ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما ولما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم